हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 019 एक साल बाद एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम जो फिलहाल अभी कॉन्सर्ट वेन्यू में बदल दिया गया है। गाने की आवाज़ हो दर्द भरे दिल में इतना कि रोनी को दिल करता, तेरे बिना बेजान साब तो होने को दिल करता। माइक पर गिटार के साथ बहुत ही तेज आवाज में गाने की ये लाइन सुनाई दे रही थी और उसके साथ ही म्यूजिक भी काफी ज्यादा तेज था, क्योंकि वहां पर उस बड़े से स्टेडियम में एक बहुत ही बड़ी शानदार कॉन्सर्ट हो रही थी। और स्टेज पर लंबे बालों वाला हैंडसम लड़का, जिसने कि हेडबैंड पहना हुआ था और उसकी हल्की बियर्ड भी नजर आ रही थी जो कि उसे एकदम रॉकस्टार वाला लुक दे रही थी, उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा दर्द भरी थी कि वहाँ कॉन्सर्ट में मौजूद लगभग सारे लोग उसके साथ एकदम डीपली कनेक्ट हो पा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी थे, इसीलिए वो सारे लोग उसका गाना और कॉन्सर्ट पूरी तरह से इंजॉय कर रहे थे।
आर के वी लव यू आर के,
उसका नाम लेकर चिल्लाने और चीयर करने की आवाज़ उस पूरी जगह पर गूंज रही थी जो कि उस तेज़ बज रहे म्यूज़िक से भी कहीं ज़्यादा थी। तभी हाथ में गिटार पकड़े हुए कंप्लीट रॉकस्टार लुक वाला वो लड़का स्टेज पर एकदम बीच में आकर खड़ा हो गया और वाइट कलर की फोकस लाइट उस पर ही पड़ी, जिसमें कि वो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर ज़रा सी भी स्माइल नहीं थी, गलत तरह का दर्द उसकी आंखों में नज़र आ रहा था। उसके कान पर माइक लगा हुआ था क्योंकि हाथ में उसने गिटार पकड़ा हुआ था, तो माइक पकड़ने के लिए उसका हाथ खाली नहीं था। और जैसे ही उसके ऊपर फोकस लाइट पड़ी, उस लड़के ने फिर से गाना शुरू किया।
तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके, रहे तेरे दिल में मगर तेरी धड़कन तक ना जा सके, जोड़ के भी टूटी रही इसकी दी डोर वे, किसको सुनाए जाकर टूटे दिल का शोर वे, माही वे माही वे।
गाने की लाइन कंप्लीट करते हुए उस लड़के ने नजर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा और फिर अपनी चेस्ट पर हाथ रखते हुए गाना कंटिन्यू किया। सारे लोग उसके गाने को एंजॉय कर रहे थे और अभी भी उसका नाम लेकर चिल्ला रहे थे। वो सब उसके फैन थे जो कि उसके पिछले 6-7 महीने के छोटे से करियर में बने थे। लोग उसके लिए पागल थे, इसीलिए उसकी सारी कॉन्सर्ट और सारे शोज इसी तरह से हाउसफुल होते थे। कुछ ही देर में वो गाना खत्म हुआ और अपनी परफॉर्मेंस खत्म होते ही अपने फैंस को बाय करते हुए दोनों हाथ मिलाकर उस लड़के ने चारों तरफ एक नज़र घुमाई और फिर वो बैक स्टेज से पीछे की तरफ आ गया, जहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारे लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। और उसके अंदर आते ही एक मेकअप आर्टिस्ट उसके चेहरे का पसीना पोंछने के लिए आगे आई। ऋषभ वहाँ पर नहीं रुका तो वो उसके साथ साथ चलने लगी और उसके साथ ही उसका मैनेजर, एक दो स्टाफ मेंबर भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। हाथ में पानी की बॉटल और टावल लेकर उनमें से एक ने उसका गिटार अपने हाथ में लिया और उसे उसकी जगह पर रखने के लिए चला गया। ऋषभ सर, ये ब्रांड एंडोर्समेंट वाले फिर से फ़ोन कर रहे हैं, उन लोगों को क्या जवाब देना है, उसके मैनेजर ने पीछे आते हुए कहा। तो ऋषभ ने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी साफ नजर आ रही थी। ऋषभ ने सीधे ही इस बात से मना करते हुए कहा, कहना क्या है मयंक, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मना कर दो, मुझे कोई भी ब्रांड एंडोर्स नहीं करना है, क्योंकि वो मेरा सपना नहीं था, मैं बस अपना सपना पूरा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लोगों के इशारों पर नाचने नहीं आया हूँ। उसके मना करने के बाद भी मैनेजर इस बात पर थोड़ा जोर देते हुए बोला, सॉरी सर, आई नो आप मना कर चुके हैं, बट ऑफर अच्छा है, उन लोगों ने पैसे बढ़ाने के लिए भी कहा है, वो आपकी शर्तों पर आपके साथ काम करने के लिए राजी हैं, तो आप प्लीज़ एक बार इसे कंसिडर, यू नो वॉट, जस्ट गो टू हेल, ऋषभ ने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहा और फिर वो तुरंत ही वहां से अपनी वैनिटी वैन की तरफ बढ़ गया। मयंक उसके पीछे वैन के अंदर आ पाता कि उससे पहले ही ऋषभ ने वैन का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। इस तरह मुंह पर दरवाज़ा बंद होते ही उसका मैनेजर मयंक तुरंत ही अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हो गया। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा जिससे कि दरवाज़ा उसके चेहरे पर ना लगे और फिर तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए बोला, ये रूही कहाँ है, सिर्फ वही ऋषभ सर को समझ सकती है और कोई नहीं। इतना बोलते हुए मैनेजर वहां से वापस बैकस्टेज की तरफ भागा रूही नाम की लड़की को ढूंढने के लिए जो कि ऋषभ की पीए है। दूसरी तरफ वृंदा मैनसन का नाम बदलकर मल्होत्रा मैनसन रख दिया गया था और भी काफी सारे चेंज हुए थे पिछले एक साल से इस घर में, लेकिन उस घर की जो रौनक थी वो एकदम ही खत्म हो गई थी। एकदम फीका और वीरान सा लग रहा था वो घर और बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मातम छाया हो उस घर के अंदर। कमऑन मीरा, सुबह सुबह मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनने हैं, मुझे वो डील चाहिए, इसका मतलब मुझे चाहिए, फिर चाहे जैसे भी। अपनी पैंट की जेब में एक हाथ डालकर बहुत ही तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए करण बोला। इस वक्त पूरे 3-पीस सूट में वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था और उसके चेहरे पर एकदम डार्क एक्सप्रेशन था, जैसे कि वो किसी बात को लेकर नाराज या फिर बहुत सीरियस है। वो बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रहा था और वो पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गया था। हाँ करण, मैं कोशिश कर रही हूँ और सब कुछ ठीक रहा तो डील जरूर हमें ही मिलेगी। लाइट ब्लू जीन्स पर ब्लैक कलर की डिजाइनर कुर्ती पहने हुए एक खुले बालों वाली खूबसूरत लड़की भी उसके पीछे ही लगभग भाग कर आते हुए सीढ़ियां उतर रही थी, जो कि और कोई नहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड मीरा है, जो कि अब उसके साथ ही काम करती है और वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट है। मीरा की तरफ देखे बिना ही करण बोला, कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए मुझे, गॉट इट। करण के वहां पर आते ही वहां पर हॉल में बैठे हुए उसकी मम्मी और पापा ने एक नजर उसकी तरफ देखा। उसकी सौतेली माँ अब उससे बहुत ही ज्यादा खुश रहती थी। आखिर करण की वजह से उन लोगों को इतने ऐशो आराम मिले थे और उसके पापा पहले से भी और ज्यादा आलसी हो गए थे। अभी भी वो हर टाइम घर में टीवी देखकर ही बिताते हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है और वो कोई काम करना भी नहीं चाहते। इसके अलावा अब तो सब कुछ बैठे बिठाए मिलता है और घर में इतने नौकर चाकर भी हैं कि उनकी माँ को कुछ भी काम करना नहीं पड़ता। उन दोनों के बीच ही समर भी साइड में बैठा हुआ था। वो इन सबसे इतना खुश तो नहीं है, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद वो पुराना घर उन लोगों ने बेच दिया था, क्योंकि वो पहले ही गिरवी और कर्ज में था। समर जल्दी वहाँ पर उन सबके साथ बैठता भी नहीं है, वो ज्यादातर अपने रूम में ही रहता है। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही नाश्ता करके वो यहाँ पर आकर बैठा था, जब उसके पापा ही दूसरी साइड पर बैठे हुए थे। उन्होंने एक नज़र करण और समर की तरफ देखा, लेकिन कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा। करण के पापा को किसी और से कोई मतलब नहीं होता। वो बस हॉल में लगा वो बड़ा सा टीवी, उस पर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं और कभी मन हुआ तो गार्डन में या कुछ दूर बाहर जाकर टहलाते हैं और दोबारा से खा पी कर इसी तरह से लेट जाते हैं। उनका ये रोज का काम है जिसकी अब तक सबको आदत हो चुकी है। समर को लगा था कि करण अब तक घर से निकल गया होगा, लेकिन जब उसने करण को अपनी तरफ आते देखा तो वो तुरंत ही अपनी जगह से उठकर वहां से जाने लगा। लेकिन करण तुरंत ही उसके पास पहुंच गया और बोला, समर कहां जा रहे हो? ऐसे भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, लेकिन तुम्हें तो बस यही आता है। समर ने कहा, मैं कहीं भाग नहीं रहा, बस सुबह सुबह बेवजह का ड्रामा अवॉइड करना चाहता हूं भाई।